एक बड़ा विषय है देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी कि आखिर भ्रष्टाचार क्या है। पूरी दुनिया परेशान है इस बात से कि हम दुनिया से भ्रष्टाचार कैसे मिटाएं। दुनिया के लगभग सभी देश परेशान हैं कि हम भ्रष्टाचार से कैसे मिटाएं। यह मुद्दा सिर्फ भारत अकेले देश का नहीं है, लगभग लगभग दूसरे अन्य देशों का भी है कि हम भ्रष्टाचार कैसे मिटाएं। भ्रष्टाचार मिटाने के संबंध में और भ्रष्टाचार क्या है और भ्रष्टाचार के बाबत काफ़ी सारी जानकारी इंटरनेट पर भी उपलब्ध है और आपकी किताबों में भी उपलब्ध है, तो मैं उस जानकारी को नहीं दोहराऊंगा, मैं उसे एज अ कॉन्स्टेंट मान के चलूंगा। हम गणित के स्टूडेंट हैं और हम उन बातों को नहीं दोहराते जो पहले कही जा चुकी है। हम उन बातों को दोहराना पसंद नहीं करते, हम सिर्फ रेफरेंस लेते हैं। तो मैं उन सब बातों को एज अ कॉन्स्टेंट लेके चल रहा हूँ और सिर्फ उन वेरिएबल्स की हम चर्चा करेंगे जो पूरे भ्रष्टाचार को एक तरीके से वैल्यू दे रहा है, जो उस वेरिएबल की वैल्यू है वो हम चर्चा करेंगे। तो भ्रष्टाचार जो शब्द है, हमें इसे थोड़ा बदलना पड़ेगा। असल में इस पूरी दुनिया में, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो और चाहे पूरी दुनिया हो, भ्रष्टाचार पैदा होता है भ्रष्ट चर्या से। भ्रष्ट चर्या, चर्या यानी लाइफ स्टाइल, भ्रष्ट यानी भ्रष्ट, करप्ट। तो जिसकी लाइफ स्टाइल भ्रष्ट होगी वो भ्रष्टाचार करेगा। हो सकता है कोई नई बात आप सुन रहे हैं, हाँ मुझे नई बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो भ्रष्ट जिसकी चर्या होगी वो जीवन में भ्रष्टाचारी बनेगा। ये अलग बात है कि मौका किसी किसी को मिलता है, किसी किसी को नहीं मिलता है, मौके की बात है। लेकिन ये जिसको मौका मिल जाता है उसे हम भ्रष्टाचारी कह देते हैं और वो आदमी भी अपने आप को कभी कभी भ्रष्टाचारी समझ लेता है। लेकिन जिसे मौका नहीं मिलता है वो अपने आप को साधु समझ लेता है, जो कि गलत है। अगर इसको मौका मिल जाएगा तो ये भी भ्रष्टाचारी बन सकता है, क्योंकि साधु होना भ्रष्टाचार से तय नहीं होता, साधु होना तय होता है तुम्हारी भ्रष्टचर्या से। कि तुम्हारी भ्रष्टचर्या नहीं है तो तुम साधु हो, अगर तुम्हारी चर्या भ्रष्ट है तो तुम साधु नहीं हो, तुम भ्रष्टाचारी हो। तो जो आपके जीवन का समीकरण हुआ, मान लीजिए जीवन एक समीकरण है, तो उस समीकरण में काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं और कुछ चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं। तो जो काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं उनमें से एक वेरिएबल है भ्रष्टाचार। तो ये जो भ्रष्टाचार वाला वेरिएबल है ये दूसरे अन्य वेरिएबल्स की तुलना में ज़्यादा वैल्यू रखता है, ज़्यादा मूल्यवान है, कीमती महत्व रखता है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है इसकी। क्यों? क्योंकि ये आपकी दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। असल में आपकी लाइफ स्टाइल ही आपके जीवन के पूरे समीकरण को बनाती है। ये सुनने में अजीब लग रहा है कि यार जो समीकरण है उसी समीकरण का कोई वेरिएबल दूसरे अन्य वेरिएबल्स पे हावी हो सकता है या रिप्लेस कर सकता है और पूरे समीकरण को अपने हिसाब से तय कर सकता है। सोचिए, सोचिएगा इस संबंध में। तो भ्रष्टाचार की बात चल रही है तो हम सीधे मुद्दे पे आते हैं कि कोई सरकारी दफ्तर है, कर्मचारी है, अधिकारी है, या कोई भी आपको काम करना है, गवर्नमेंट काम है, प्राइवेट काम है, कोई भी काम है, वहाँ पे कोई रिश्वत ले रहा है तो हम कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार कर रहा है और हम उसे दोषी देते हैं जो भी भ्रष्टाचार करता है। हम उसे दोष सिद्ध, उसे अपराध बोध महसूस करवाते हैं कि तुमने भ्रष्टाचार किया। हाँ बेशक उसने भ्रष्टाचार किया और उसे अपराध बोध होना चाहिए, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग इस सोसाइटी में रहते हैं वो भी उस आदमी के भ्रष्टाचारी होने के पीछे है, उनका भी हाथ है। अब हमें इस संबंध को स्थापित करना है। मैं इस संबंध को अभी साबित करूंगा, सिद्ध करूंगा कि कैसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति और सोसाइटी के बीच रिलेशन है, और ये जो रिलेशन है इसके कारण ही वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी बन रहा है, सोसाइटी के कारण ही वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी बन रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक डेफिनेशन बताना चाहता हूँ, एक परिभाषा, और वो परिभाषा है नंबर वन होने की। हर व्यक्ति नंबर वन होना चाहता है, कोई धन कमा के नंबर वन होना चाहता है, कोई मान सम्मान कमा के नंबर वन होना चाहता है, कोई डिग्रियां हासिल करके नंबर वन होना चाहता है, कोई कुछ और हासिल करके नंबर वन होना चाहता है, कोई राजनीति में नंबर वन होना चाहता है। तो काफ़ी सारे क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी तरीके से नंबर वन होना चाहता है, कोई दुनिया पे हावी होना चाहता है, कोई दुनिया को नियंत्रित करना चाहता है, काफ़ी सारे क्षेत्र हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते, ये तो ये नंबर वन होने का पहला डायमेंशन है जो बाहर की तरफ है, यानी जो बाहरी जगत, जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जिसको हम एक तरीके से भौतिक दुनिया कह सकते हैं, उसकी तरफ है कि भौतिक दुनिया में लोग अमीर होना चाहते हैं या राजनीति में बड़ा पद पाना चाहते हैं एक्सेट्रा। तो ये भी एक नंबर वन होना है। लेकिन एक दूसरा जगत भी है जिसे हम आंतरिक जगत के नाम से जानते हैं, अंतर्विज्ञान जिसे हम कहते हैं, अंदर का विज्ञान, इंटरनल। तो वो जो अंदर की दुनिया है, उस अंदर की दुनिया में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नंबर वन होना चाहते हैं। तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं, जो बाहर की दुनिया में नंबर वन होना चाहते हैं और दूसरे वो जो अंदर की दुनिया में नंबर वन होना चाहते हैं। तो दो तरह के नंबर वन हुए। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने वो बात साझा कर दी डेफिनेशन की, नंबर वन क्या है, नंबर वन होना क्या है, आंतरिक और बाहरी जगत। अब मैं एक डेफिनेशन और साझा करना चाहता हूँ और वो डेफिनेशन है कारक तत्व। बेसिकली ये वो तत्व होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं उन कामों को करने के लिए जो आप करना चाहते हैं, या कुछ भी करने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं कारक तत्व, मोटिव्स। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो नेचुरल है और दूसरे वो जो ह्यूमन क्रिएटेड है, ह्यूमन जनरेटेड है। नेचुरल में आपका बेसिकली भूख, प्यास, ये सब चीज़ें आती हैं, आराम करना, ये सब नेचुरल मोटिव्स है। भूख, प्यास, पेट, आराम करना, इन सब तत्वों की वजह से मोटिवेट हो रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि आप प्राकृतिक कारक तत्वों के कारण प्रेरित हो रहे हैं, नेचुरल मोटिव्स। दूसरे हैं आपके ह्यूमन क्रिएटेड, मानव निर्मित। ये वो मोटिव्स होते हैं, इनमें वो मोटिव्स आते हैं जो मानव ने अर्जित किए, एक्वायर्ड किए, इन्हें हम एक्वायर्ड मोटिव्स भी कह सकते हैं। एक्वायर्ड मोटिव्स जैसे कि पैसा कमाना है, बड़ा मकान बनाना है, पद पे पहुंचना है, ऊंचे पद पर, यानी कि बेसिकली नंबर वन होना है, नंबर वन होने की महत्वाकांक्षा भी इसी में आती है। तो हम मोटिव्स को भी समझ लिए और हमने नंबर वन होने की डेफिनेशन और उसके टाइप्स को भी समझ लिया। हमें बस इन दो डेफिनेशंस का यूज़ करना है आगे भ्रष्टाचार को समझने के लिए। हम ये कह सकते हैं कि हम ये दो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे अपने भ्रष्टाचार के वेरिएबल को या उसके जो समीकरण है उसको ठीक करने के लिए, उसको समझने के लिए, और उस संबंध को सिद्ध करने के लिए कि एक भ्रष्टाचारी आदमी कैसे सोसाइटी द्वारा ही मोटिवेट होता है भ्रष्टाचार करने के लिए। तो अब मैं आपको जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति है उसे दो कैटेगरी में बांटूंगा। पहली कैटेगरी है जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में नंबर वन होना चाहते हैं, और यानी कि जो हमारे एक्वायर्ड मानव निर्मित कारक तत्व हैं, मोटिव्स हैं, उनसे संचालित हो रहे हैं, उनसे प्रेरित हो रहे हैं, उनके कारण वो कार्य कर रहे हैं ताकि वो नंबर वन बन सकें। और भ्रष्टाचारी आदमी की दूसरी कैटेगरी है जो आंतरिक जगत में, इंटरनल वर्ल्ड में नंबर वन होना चाहते हैं, ऊंचा पहुंचना चाहते हैं। यानी ये लोग नेचुरल, हम सबसे पहले समझते हैं पहले टाइप को। तो जो पहला टाइप है उसमें जो मोटिव्स हैं वो हमारे एक्वायर्ड है, मानव निर्मित है, यानी कि पैसा कमाना है, धन कमाना है, बड़ा मकान, ऊंचा पद, ये सब नंबर वन होना है। अब ये निर्भर करता है किस पे, सोसाइटी पे, समाज पर। तो जो समाज है वो ज़्यादातर हिस्सा जो है समाज का, वो किसको प्राइमरी रखता, किसको ज़्यादा वैल्यू करता, मूल्य देता, इन सब चीज़ों को ही, पैसे को मूल्य देता या ऊंचे पद को मूल्य देता, यानी बड़ा पैसा, बड़ा पद, ऊंचा पैसा, नंबर वन होना है, राजनीति में पहुंचना है, दुनिया पे शासन करना है, दुनिया पे नियंत्रण करना है, दूसरे को कैसे दबा के मैं आगे बढ़ जाऊँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप ऊंचा पद मत कमाइए, मत पहुंचिए, बात ये नहीं है। मुद्दा ये भी नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा ना कमाएं, बात ये नहीं है। बात ये है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो हमारा बाहरी जगत है इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे जो हमारा पैसा है ये लिमिटेड है, हमारे जो पद हैं वो लिमिटेड हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी देश का प्रधानमंत्री, तो हमारे देश में प्रधानमंत्री तो वैसे एक ही होता, और दूसरे देशों में जहाँ तक मुझे मालूम है एक ही होता, राष्ट्रपति भी एक ही होता, दूसरे देशों में भी लगभग लगभग मुझे मालूम है कि एक ही होता, दो राष्ट्रपति तो नहीं होते, मैंने तो नहीं देखे आज तक। हाँ, भविष्य में कोई ये सोच ले कि किसी भी देश में 10 राष्ट्रपति होंगे या 20 प्रधानमंत्री होंगे, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि अभी तो एक ही है। तो अगर मान लीजिए तो हमारे देश का जो सबसे ऊँचा पद है वो कौन सा है? राष्ट्रपति का पद। सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी? राष्ट्रपति की, 5 लाख, नो टैक्स फ्री, सबसे ज़्यादा सुविधाएं। अब मुझे यह बताइए कि कोई व्यक्ति जो ऊंचा पाना चाहता है, ऊंचे की तो कोई वो नहीं है, क्योंकि नंबर वन होना है पद के मामले में तो आपको तो जाहिर है राष्ट्रपति का ही आप सोचेंगे, तो राष्ट्रपति कोई एक ही हो सकता ना। तो जो कोई एक ही हो सकता है उसे पाने के लिए उस व्यक्ति को भ्रष्टाचार तो करना पड़ेगा, और वो भ्रष्टाचार कैसे करेगा? वो करेगा अपनी दिनचर्या से, अपनी लाइफस्टाइल से। भाई जिस आदमी की लाइफस्टाइल में भ्रष्टाचार आएगा तभी तो वो भ्रष्टाचार कर सकेगा, तभी तो वो ऊंचे पद पहुंच सकेगा, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है दूसरों को मैनिपुलेट करना, गलत दिशा में मैनिपुलेट करना ज़रूरी है, मैनिपुलेशन चाहिए इसमें। ये संभव है कि सहयोग की भावना रखते हुए, दूसरों को भी मोटिवेट करते हुए कि चलो मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी राष्ट्रपति बनो, वो आदमी इस तरीके से राष्ट्रपति नहीं बन सकता। भाई उसे राष्ट्रपति बनना है और वो कोई एक ही बन सकता, या तो वो खुद बन सकता या दूसरे को बना सकता। अब वो ये तो नहीं करेगा कि भाई वह दूसरे को भी मोटिवेट करेगा कि तुम भी राष्ट्रपति बन सकते हो, वह दूसरे को थोड़ी बताएगा ज्ञान कि तुम राष्ट्रपति कैसे बन सकते हो, नहीं बताएगा ना, क्योंकि उसे खुद बनना है। तो जिसे खुद बनना है राष्ट्रपति, तो जाहिर है उसे मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, और मैनिपुलेशन की शुरुआत कहाँ से होगी? लाइफस्टाइल से। तो जिस आदमी की लाइफस्टाइल ही भ्रष्ट होती है वही आदमी भ्रष्टाचारी बन सकता है। जिस आदमी की लाइफस्टाइल में ही भ्रष्टाचार ना आ सके ऐसी संभावना ही नहीं, उसकी आत्मा का केंद्र ही वो नहीं है, वो बीमार नहीं, वो विक्षिप्त नहीं है, तो वो भैया भ्रष्टाचारी बन नहीं सकता। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जितने भी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं किसी भी सरकारी दफ्तर में या गवर्नमेंट या प्राइवेट किधर भी किसी भी क्षेत्र में, समझ लेना चाहिए कि उनकी लाइफस्टाइल में भी भ्रष्टाचार होगा, उनकी लाइफस्टाइल भ्रष्टाचार्या होगी, तभी यह संभव है कि वो भ्रष्टाचारी बन सके। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस आदमी की लाइफस्टाइल में भ्रष्टाचार होता है उसका जीवन भी भ्रष्टाचार बन जाता है, वो भी भ्रष्टाचार की तरह जड़ हो जाता है। इसी को मैं असफलता कहता हूँ, लेकिन सोसाइटी के हिसाब से ये सफलता है, परंतु वास्तविकता में देखें, सार्थकता की परिभाषा से देखें तो ये असफलता है। हमने पहले टाइप को समझा, अभी मैं समझाता हूँ कि कैसे ये जो भ्रष्टाचारी आदमी है इसके लिए सोसाइटी भी जिम्मेदार है, क्योंकि सोसाइटी इस संबंध इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि सोसाइटी में इन ये जो एक्वायर्ड मोटिव्स हैं हमारे, ऊंचा पद और ये सब चीज़ें, ऊंचा पैसा, इसको ही मूल्य दिया जा रहा है पूरी सोसाइटी में। अगर सोसाइटी इसको मूल्य देना बंद कर दे, इसको एक बेसिकली साधन की तरह समझे, टूल की तरह समझे, भाई हाँ ठीक है कोई ना कोई व्यक्ति तो राष्ट्रपति बनेगा ये व्यवस्था के लिए ज़रूरी है, कोई ना कोई व्यक्ति तो पैसा कमाएगा ये व्यवस्था के लिए ज़रूरी है, लेकिन पूरा का पूरा सोसाइटी एक ही चीज़ को मूल्य दे सबसे ज़्यादा, जो कि गलत है। भाई आपके घर में खाना बनता है, आप दाल भी खाते हैं, आप चावल भी खाते हैं, आप रोटी भी बनाते हैं, सब कुछ आप सब कुछ खाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप रोटी को ज़्यादा मूल्य देंगे तो आप रोटी ज़्यादा खाएंगे, ऐसा तो नहीं है भाई, आप सभी कुछ खाते हैं ना। वैसे ही इस दुनिया में राष्ट्रपति की भी ज़रूरत है, प्रधानमंत्री की भी ज़रूरत है, और पैसे की भी ज़रूरत है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम बाकी सब जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि दूसरे और जो पद हैं हमारे, लेखक का पद है, प्रोफेशनल जो भी और दूसरे प्रोफेशन है, टीचर्स हैं और डॉक्टर्स हैं और अन्य जो भी लाइनें हैं, उनको हम नीचे दबा के सबसे ज़्यादा मूल्य इन धन को और ऊँचे पद राष्ट्रपति को ही देंगे, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना, ये तो बीमारी हुई ना। तो सोसाइटी ही बीमार है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मूल्य दे रही है इसलिए भ्रष्टाचारी आदमी पैदा हो रहे हैं। अगर सोसाइटी इनको मूल्य देना बंद कर दे, यानी कि सार्थकता की परिभाषा को याद रखते हुए मूल्य दे, सार्थक चीज़ों को मूल्य दे, तो मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार की कोई संभावना बचेगी नहीं, क्योंकि फिर कोई भी आदमी उनको पाना नहीं चाहेगा ना, फिर कोई भी आदमी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेगा। लेकिन आज हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, शायद मैंने गलत कह दिया, हर आदमी तो नहीं बनना चाहता, लेकिन अधिकांश लोग 99% लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में इज्जत प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा पावर सबसे ज़्यादा कुछ भी कर सकता, नियंत्रण करने की पूरी शक्ति। इसी तरीके से पैसे के साथ भी है, धन के साथ भी ऐसा ही है। आप सबसे ज़्यादा मूल्यवान किसको समझते, आप सबसे ज़्यादा मूल्य किसको देते सोसाइटी में? हम सोसाइटी जो है वो मूल्य देता है उस आदमी को जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा धन है जिसके पास, जिसके पास ज़्यादा धन उसको ज़्यादा महत्व देते हम। भाई जिसके पास ज़्यादा धन होता है हम उसे अलग तरीके से बिठाते, उसका अलग ख्याल रखते, ये सोसाइटी में हमने देखा है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी ना भाई। इसको भी वैसे ही सामान्य तरीके से लेना चाहिए था, जैसे कि एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम क्या रहता, मरीज को ठीक करना, या लोगों को बीमार नहीं होने देना ही डॉक्टर का काम है, कि लोग बीमार ही ना पड़े। यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, समाज के स्वास्थ्य का, लोगों के स्वास्थ्य का बेसिकली ध्यान रखना ही डॉक्टर का काम है। टीचर का क्या काम है, टीचर का काम है कि वो सही ज्ञान दुनिया के साथ साझा करे, यानी समाज के साथ सही ज्ञान साझा करे, उन्हें बताए, ये टीचर का काम है। लेकिन ठीक वैसे ही पैसे वाले व्यक्ति का क्या काम है, जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है, धन कमा रहा है, धनी का क्या काम है? तो धनी का काम है धन कमाना, लगातार धन कमाते रहना और धन के नए नए उपाय खोजना, धन को पैदा करना, धन को निर्मित करना, यह धनी का काम है, ताकि वो समाज के काम आ सके। एक लेखक का काम है कि वो लगातार या उसकी सृजनात्मक क्षमता के हिसाब से वो लेखन करे, नए नए आर्टिकल्स लिखे, नई नई चीज़ें लिखे, गीत लिखे, संगीत लिखे, जो उसकी इच्छा हो वो लिखे और समाज को दे, समाज में लोगों को दे, ताकि दूसरे लोग भी उसकी प्रतिभा का लाभ ले सके, आनंद ले सके। ठीक वैसे ही टीचर अपना ज्ञान देगा, समाज में बांटेगा, तो समाज को या लोगों को उसका आनंद मिलेगा, लाभ मिलेगा। उसी तरीके से एक संगीतज्ञ संगीत गाएगा तो समाज के लोगों को उसको आनंद मिलेगा, पैसा नहीं लेगा वो, बस वो अपनी चीज़ों को बांटेगा, मुफ्त में बांटेगा। ठीक वैसे ही धनी आदमी का काम, जो धनी आदमी है वो पैसा बांटेगा, जैसे संगीतज्ञ अपनी संगीत की कला बांट रहा है, लेखक अपनी लेखन को बांट रहा है, चित्रकार अपने चित्रकारियों को बांट रहा है समाज में, ठीक वैसे ही धनी व्यक्ति अपने धन को बांटेगा। तो इस तरीके से व्यवस्था चल सकती है। इस पे ज़्यादा विस्तार पे नहीं जाएंगे, इसको हम व्यवस्था को, इस बात को हम यहीं पे रोकेंगे। तो हम बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार कुल कारण क्या है हम समझ गए हैं कि उनका कुल कारण है समाज के जो मोटिव्स हैं, वो मोटिव्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मूल्य हम उन चार पांच गिनी चुनी चीज़ों को दे रहे हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा समाज उस तरफ भागा जा रहा है। और यही कारण है कि वो जो व्यक्ति है भ्रष्टाचारी वो समाज के द्वारा ही मजबूर है, क्योंकि समाज उन्हीं को सम्मान दे रहा है, उन्हीं की प्रशंसा कर रहा है, उन्हीं को मान दे रहा है, जो वो तीन चार चीज़ों को ऊंचे से ऊंची चीज़ों में हासिल करना चाहते, नंबर वन होना चाहते बेसिकली। मैं ये सिद्ध कर सका हूँ और ये सिद्ध हो चुका है कि कैसे भ्रष्टाचारी आदमी के पीछे उसका सोसाइटी होता है, और आप पहले टाइप के भ्रष्टाचारी को भी समझ चुके हैं। अब बात आती है दूसरे टाइप के भ्रष्टाचारी की, जो हमने बात की थी, हम भौतिक को हमने बाहरी भ्रष्टाचारी को समझ लिया है। अब हम समझते हैं वो भ्रष्टाचारी को जो इंटरनल दुनिया में, आंतरिक जगत में भ्रष्टाचार करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सन्यासियों की, महात्माओं और साधु संतों की। हाँ, मैं उन तथाकथित महात्माओं और साधु संतों की बात कर रहा हूँ, सन्यासियों की बात कर रहा हूँ, जो तथाकथित हैं, तथागत नहीं है, तथाकथित हैं। ठीक है, तो जो हैं, जो सही है, मैं उनकी बात ही नहीं करता, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो सही नहीं है, जो भ्रष्टाचारी है। तो महात्मा और तथाकथित महात्मा साधु संतों से मेरा तात्पर्य है उन लोगों से जो आध्यात्मिकता से संबंध रखते हैं, जो आध्यात्मिकता को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ आध्यात्मिकता को ही ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जो बाहरी जगत है, भौतिक जगत, उसकी निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि ये सब मोह माया है, माया से दूर रहो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आध्यात्मिकता का कोई मतलब नहीं है जब तक कि हम भौतिक रूप से संपन्न ना हो। उदाहरण के लिए, जैसे हमारे मैथमेटिक्स और साइंस के जो सब्जेक्ट रहते, वो क्या करते हैं, वो ढांचा प्रदान करते हैं, वो ढांचा बनाने के काम आते हैं, आधार बनाने के काम आते हैं। उदाहरण के लिए, एक बिल्डिंग बनाना है मुझे, तो उस बिल्डिंग का जो भी ढांचा बनेगा, वो कौन से विषयों से बनता है, वो बनता है मैथमेटिक्स से, वो बनता है साइंस और उसके समस्त सब्जेक्टों से, जो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री जो नेचुरल साइंसेस हैं उनके थ्रू बनता है ढांचा। लेकिन अगर मैं उसका हूँ, अगर मैं कहूँ कि भाई ये बिल्डिंग का ढांचा तो बन गया, लेकिन इस बिल्डिंग को सुंदर कैसे बनाऊँ, देखने में अच्छा कैसे बनाऊँ, इसको सौंदर्य कैसे प्रदान करूँ, तो वो कौन देगा? वो देगा आर्ट्स। तो जीवन में दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। जीवन अखंड होता है, उसको साइंस भी चाहिए और आर्ट्स भी चाहिए, मैथमेटिक्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भौतिकता भी चाहिए और आध्यात्मिकता भी चाहिए। लेकिन कोई अगर कहे कि सिर्फ भौतिकता से काम चल जाएगा तो वो अधूरा है, और कोई अगर ये कहे कि सिर्फ आध्यात्मिकता से काम चल जाएगा तो भी अधूरा है, क्योंकि बिल्डिंग का ढांचा तो बन गया, ठीक है, लेकिन उसमें रहने का मन नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? वो बिल्डिंग तो बन गई लेकिन वो घर नहीं बन सकेगा। वो हाउस तो बन गया पर वो होम नहीं बन सकता। समझ रहे हैं आप? ठीक वैसे ही इसके विपरीत है। कोई कहे कि मैं बिल्डिंग को सौंदर्य दे सकता हूँ लेकिन ढांचा नहीं बनाऊँगा, यानी मैं बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, बिल्डिंग को सौंदर्य देना चाहता हूँ, सुंदर करना चाहता हूँ, पेंट पोतना चाहता हूँ, लेकिन दीवार नहीं बनाऊँगा तो कैसे काम चलेगा? तो वैसे ही जो दूसरे टाइप के भ्रष्टाचारी हैं वो आध्यात्मिक जगत के भ्रष्टाचारी हैं। वो आध्यात्मिक ढंग से, बिल्कुल अच्छे ढंग से भ्रष्टाचार करते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। वो कहते हैं कि छोड़ पैसा, क्या करेगा एक दिन, लेके कोई नहीं जाता, सिकंदर जैसे लोग भी छोड़ के चले गए, क्या करेगा धन कमा के, क्या करेगा पद कमा के, क्या करेगा डिग्री कमा के, क्या करेगा पढ़ के, एक दिन सब छूट जाएगा। तो ये वो लोग हैं जो दूसरे टाइप के भ्रष्टाचारी हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ भ्रष्टचर्या की, भ्रष्ट लाइफ स्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भी एक तरीके से लाइफ स्टाइल के साथ भ्रष्टाचार करना हुआ है, क्योंकि लाइफ स्टाइल अखंड होनी चाहिए, जीवंत होनी चाहिए, उसमें जीवन होना चाहिए, रस होना चाहिए। लेकिन ये जो दूसरे टाइप के भ्रष्टाचारी हैं, इनके जीवन में, इनकी बातों को सुन के, इनके विचारों से ऐसा लगता है कि ये सूखे पत्ते हैं, इनमें कोई रस नहीं है, इनमें कोई सुंदरता नहीं है, कोई जान नहीं, कोई जीवन नहीं, जीवन के प्रति इनकी आँखें निंदा से भरी हुई हैं, इनकी आँखें भौतिकता के लिए निंदा से भरी हुई है। अगर वाकई आप भौतिकता से इतनी नफरत करते हैं, समस्त भौतिक चीज़ों का त्याग कर दीजिए, समस्त भौतिक चीज़ों का त्याग कर दीजिए। और ये लोग कई बार दिखाएंगे भी आपको, इस तरीके का जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो दिखाएंगे भी कि हमने धन का त्याग कर दिया, हमने नौकरी छोड़ दी क्योंकि हम ज़्यादा पैसा, हमको मोह माया से मतलब नहीं है, हम ज़्यादा पैसा कमाते नहीं। पहली बात तो ये कि आप कमा नहीं सकते, आप में वो दम नहीं है, क्योंकि पैसा कमाना इस दुनिया के केवल 5% लोगों को आता है, है ना। जिस तरीके से दुनिया में 5% लोग होते हैं जो चित्रकार बन सकते हैं, अच्छे चित्रकार, जिस तरीके से दुनिया में 5% लोग होते हैं जो अच्छे लेखक बन सकते हैं, जिस तरीके से दुनिया में केवल 5% लोग होते हैं जो हर तरीके से अपने ही क्षेत्र में टॉपर बनते हैं, इस दुनिया में केवल 5% लोग होते हैं जो अच्छे टीचर बनते हैं, ठीक वैसे ही इस दुनिया में 5% लोग होते हैं जो धनी बनते हैं, अच्छे धनी बनते हैं। मैं नकली धनी की बात नहीं कर रहा, मैं नकली पूंजीपतियों की बात नहीं कर रहा, मैं असली धनियों की बात कर रहा हूँ। आप इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो बेहतर है, जो बेटर है, आप देखेंगे कि वो सिर्फ 5% के ही संख्या में है, 5% के ही प्रतिशत में है। ठीक इसी प्रकार से केवल 5% लोग ही हैं इस समय जो असल मायनों में आध्यात्मिक हैं, जो भ्रष्टाचारी नहीं है, असल मायनों में आध्यात्मिक है। लेकिन जिसने भौतिकता की नींव ही न डाली हो, वो आध्यात्मिक भला हो तो कैसा हो, नामुमकिन है ये। तो ये दूसरे प्रकार के भ्रष्टाचारी थे। मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और हर चीज़ पर बहुत लंबी टॉक हो सकती है। तो एक जो उपाय मैं जो दे रहा हूँ, एक उपाय की मैं बात कर रहा हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ, वो उपाय ये है कि अगर हम इस दुनिया को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहें, या हम किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहें, किसी राज्य को, किसी नगर को, किसी मोहल्ले को भ्रष्टाचार मुक्त, या किसी घर को, आपका जो परिवार है, किसी परिवार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना हो, तो उसका एक ही उपाय है। क्या है वो उपाय? वो उपाय है कि आप सोसाइटी के जो प्रेरक, जो मोटिवेटिंग फैक्टर हैं कि कौन सी चीज़ें सोसाइटी के हिसाब से ज़्यादा मूल्यवान हैं, उनको ना देखते हुए आप असल में अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से काम करें। जैसे मैंने कहा ना कि 5% लोग इस दुनिया में धनी बन सकते हैं, 5% लोग ही लेखक बनते हैं, 5% लोग ही चित्रकार बनते हैं, 5% लोग ही हैं जो संगीतज्ञ और गायक और पता नहीं क्या क्या बन सकते हैं। इस तरीके से इस दुनिया में ना जाने कितने प्रकार के पर्सनालिटीज़ हैं, व्यक्तित्व हैं, तो हम तो केवल कुछ ही जानते हैं और हम उन कुछ में से ही बनना चाहते हैं। और सोसाइटी में तो ऐसा है कि वो कुछ में से कुछ दो तीन व्यक्तित्व होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा मूल्य दिया जा रहा है, एक धनी को। भाई भाई इस दुनिया में मैंने कहा कि 5% लोग हैं जो धनी बन सकते हैं और बाकी के 95% जो लोग हैं वो कुछ और बनेंगे, लेकिन पूरे जो 95% लोग हैं ना, सॉरी पूरे जो 100% लोग हैं वो उस 5% जो धनी वाली कैटेगरी है उसको ही मूल्य दे रहा है सबसे ज़्यादा, उसी को पैरामीटर मान रहा है। अब बताइए ये मैथमेटिकल रूप से या लॉजिकल रूप से गलत है कि नहीं? बिल्कुल ये गलत है, लेकिन इसकी परवाह नहीं हो रही है। ये कह रहा था कि अगर इस पूरी दुनिया को या किसी भी हिस्से को भ्रष्टाचार मुक्त करना हो तो हमें पर्सनालिटी का जो एजुकेशन है इसको प्रचार करना होगा और उस पर काम करना होगा, एक एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारना होगा। लेकिन पूरी दुनिया इस समय कुछ दूसरे ही कामों में लगी है, और वो काम क्या है आप भली भांति समझते हैं, वो काम है रोज़गार। इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या इस समय बनी हुई है तो वो है बेरोज़गारी। शायद हमारे देश में भी इस समय सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी बनी है, और किसी से भी पूछे तो वो कहेगा बेरोज़गारी, पैसा नहीं है। भैया आपके पास पैसा नहीं है ये समस्या नहीं है, हो सकता है कि आप उस पैसे के लिए ना हो सकता है कि आप वो 5% की कैटेगरी में ना आते हों, आप किसी दूसरे कैटेगरी में आते होंगे, लेकिन सोसाइटी ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, उन 100% लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है जो केवल 5% धनी लोगों के अनुकूल है। तो बताइए ये जो व्यवस्था है ये एक तरीके से इलॉजिकल हुई, अवैज्ञानिक हुई, क्योंकि ये सभी का समर्थन नहीं कर रही, ये सभी को अनुकूल वातावरण नहीं दे रही है। क्या ये एक तरीके से अपराध नहीं है दुनिया के साथ? क्या ये अनैतिक नहीं है, अनैथिकल नहीं है? बेशक अनैथिकल है, अनैतिक है, बेशक गलत है, दुनिया के साथ भी एक तरह की बेईमानी है, और उन 95% लोगों के साथ भी एक तरीके की बेईमानी है, अनैतिकता है, कि वो अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने की बजाय, उसको डेवलप करने की बजाय या उसके क्षेत्र में काम करने की बजाय वो किसी दूसरे कैटेगरी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब भाई जो व्यक्ति चित्रकार वाली कैटेगरी में आ रहा होगा नेचुरल ढंग से देखें या जो भी है, तो उसको चित्रकारी के क्षेत्र में काम करना चाहिए था, उसे चित्रकार बनने की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, धनी बनने की कैटेगरी में जा रहा है, 5% धनियों में शामिल होना चाहता है, जो कि एक तरीके से मुश्किल है, संघर्ष करके कभी कभी कुछ लोग बन जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन मैं बहुत आसानी से बनने की बात कर रहा हूँ, मैं संघर्ष की बात करता ही नहीं जीवन में। मैं तो ये कहता हूँ कि जीवन में संघर्ष कभी मत करिए, संघर्ष का क्या मनोविज्ञान है उस पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम दूसरे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि वो चित्रकार आदमी अपनी कैटेगरी को छोड़ के कुछ दूसरी कैटेगरी में जाना चाहता है, धनी वाली कैटेगरी में जाना चाहता है, तो संघर्ष करके कभी कभी बन जाते लोग, लेकिन अधिकांश लोग नहीं बन पाएंगे, 99% नहीं बन पाएंगे, 1% कभी कोई संघर्ष करके निकल जाए तो बात अलग है। इसको आप एक दूसरे उदाहरण से समझें, जैसे कि एक महिला है और एक पुरुष है, ठीक है, इसे हम मेल और फीमेल नाम से डिनोट करेंगे, एक फीमेल है और एक मेल है। अब मुझे बताइए हम नेचुरल ढंग से फीमेल को मेल बना सकते हैं क्या? हम कोई साइंटिस्ट तरीका ना लगाए, सिर्फ नेचुरल ढंग से, अपने आप की बात कर रहा हूँ मैं जीवन जो प्रकृति ने हमको जो चीज़ जैसी दी है मैं उसी फॉर्म में अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात कर रहा हूँ। क्या ऐसा संभव है? मुझे तो दूर दूर तक नहीं लगता कि ऐसा संभव है। भाई प्रकृति ने अगर फीमेल बनाई है तो कुछ सोच समझ के बनाई है, ठीक है, और प्रकृति ने अगर मेल को बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया है। हाँ हम साइंटिफिक फेर बदल करके कुछ अपने तरीके दिमाग लगा के कुछ कर लें, चेंज एक्सचेंज कर लें चीज़ें, वो अलग है, वो मैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो मानव निर्मित हो गया, मैं नेचुरल की बात कर रहा हूँ। जैसे मेल फीमेल नहीं बन सकता है ना, वैसे फीमेल मेल नहीं बन सकती, ठीक इसी प्रकार से एक चित्रकार आदमी एक धनी नहीं बन सकता। आप समझें इस बात को, मैं एक अद्भुत विचार पर चर्चा कर रहा हूँ इस समय। और अगर कोई चित्रकार धनी होना चाहेगा तो वो हमेशा स्वभावगत दुखी होगा, दुख को ही उपलब्ध होगा, आपने एक वाक्य सुना होगा, एक शब्द सुना होगा कि कई लोग जो पहले गरीब थे फिर बाद में उनके पास घर गाड़ी बंगला सब आ गया, अमीर हो गए, लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुख है। ऐसा क्यों है? दुख क्यों है? पहले जब गरीब थे तब वो सोचते थे कि भाई अमीर हो जाएंगे, गाड़ी बंगला सब हो जाएगा तो हम सुख को प्राप्त हो जाएंगे, हम आनंद में रहेंगे, लेकिन फिर भी दुख बना है। क्यों बना है? थोड़े दिन सुख आया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद फिर दुख ही दुख है जीवन में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि धन पाने के बाद दुख आ जाता है या धन में कोई समस्या। धन में समस्या नहीं है, समस्या क्या है कि उस आदमी ने अपनी कैटेगरी चेंज कर ली है। हो सकता था कि वो धनी कैटेगरी के में ही फॉल ना किया हो बाय डिफॉल्ट। ये जो हमारा प्रकृति का एक ऑटोमेशन चल रहा है, पूरी नेचर का एक ऑटोमेशन है, उस ऑटोमेशन द्वारा ही वो धनी कैटेगरी में फॉल ना करता हो, इसलिए तो वो दुख को उपलब्ध हुआ ना। वरना धनी कैटेगरी में जो फॉल किया है नेचुरल ढंग से, वो भला अपने पन में, अपने होने के एहसास में दुखी क्यों होगा? मैं एक इंसान हूँ, और मैं अगर अपने आप को महसूस करता हूँ, एहसास करता हूँ, इंसान क्या है, एहसास करने वाली एक मशीन, तो जो अपने आप को एहसास करती है, क्या मैं इससे दुखी हो सकता हूँ? नहीं ना, मैं तो सुखी होता हूँ। जितना ज़्यादा मैं स्वयं को एहसास करूँगा उतना सुखी होता है मनुष्य। ठीक वैसे ही एक व्यक्ति अगर धनी पैदा हुआ है, कहने का मतलब धनी कैटेगरी में फॉल करने वाला है, कर रहा है नेचुरल ढंग से, तो क्या वो धनी होने से दुखी होगा? नहीं होना चाहिए ना। अगर दुखी हो रहा है तो समझना चाहिए कि वो किसी दूसरी कैटेगरी का था जो धनी कैटेगरी में आ गया है। तो जब तक आप वही नहीं बन जाएंगे जीवन में जो आप बनने को हुए हैं, या जो आपके अंतरात्मा का स्वभाव है, जो आपकी आत्मा का केंद्र है, आप वही नहीं बनेंगे जीवन में, वही नहीं करेंगे, तो आप जीवन में हमेशा दुख को उपलब्ध होंगे। बाकी दुख से कोई आपको नहीं बचा सकेगा। दुख क्या है पहले समझें। दुख को मैं सिंपल शॉर्ट भाषा में कहूँ तो दुख बेसिकली एक तरीके का इंडेक्स है, एक तरीके से सूचक है। वो ये बता रहा है कि तुम गलत दिशा में चले गए हो, वो ये बता रहा है कि तुम गलत कैटेगरी में पहुँच गए हो। बस यही दुख है, दुख इसके सिवा कुछ भी नहीं। सुख क्या है? सुख इसके विपरीत है, दुख के ही विपरीत सुख है। हम कहते हैं ना सुख दुख विपरीत है, तो वो यही है कि सुख माने क्या? सुख माने कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। आपने जीवन में कई बार अनुभव किया होगा कि जब आप सही दिशा में चलते हैं, जब आप जीवन में सही कर रहे होते हैं, तो आप सुख को उपलब्ध होते हैं, या जब आप सुख को उपलब्ध हो, सुख का आप अनुभव करते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ सही हुआ है, और आपने कई बड़े बड़े जो हमारे धनी लोग हैं या किसी भी कैटेगरी के और लोग हैं, सफल लोग हैं, जो वाकई अपनी पर्सनालिटी को, जो अपनी मौलिक पर्सनालिटी थी उसी कैटेगरी में वो सफल हुए हैं, जीवन में उन्होंने ऊंचा मुकाम हासिल किया है, उनके अगर आप कभी बायोग्राफी पढ़ेंगे या उनके सुविचार पढ़ेंगे, तो आपको कई बार कहीं कहीं आपको सुनने को मिल जाएगा कि कोई भी निर्णय जीवन में लेना हो तो सुख के समय में ही लेना, दुख के समय में कभी कोई निर्णय मत लेना, वरना निर्णय गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा उसने? ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि उसे इसके पीछे का कारण पता है, है ना। दुख का मतलब है कि तुम गलत जगह आ गए हो भाई। आप एक रास्ते पे चल रहे हो और चलते चलते आपको एक चौराहा मिला, और आप गलती से, आपको मान लीजिए राइट मुड़ना था, आप गलती से लेफ्ट मुड़ गए, ठीक है। आप लेफ्ट वाले रास्ते पे चल रहे हैं और अचानक मान लीजिए आप दुखी हो गए, रास्ते में चलते गए आप दुखी होते जा रहे, क्योंकि कुछ गलत हो गया ना, आप गलत दिशा में आ गए। आपको पता चल रहा है ना, अंदर अंदर पता चल रहा है कि भाई आप गलत दिशा में आ गए, जीवन आपका गलत दिशा में चल रहा है, गलत कैटेगरी में आ गया है। ठीक वैसे ही अब उस लेफ्ट वाले रास्ते पे आप चल रहे हैं और आगे फिर से एक चौराहा आया और आप दुखी हैं अभी तो, आप क्योंकि आप गलत रास्ते पे पहले से हैं, और आप सोचें कि निर्णय करें कि कौन से रास्ते को चुनें, तो जाहिर है गलत हो जाएगा ना फिर से। इसलिए जिस आदमी ने ये कहा था कि हमेशा सुख के समय में ही निर्णय करना, सुख के समय में ही अच्छे बड़े काम करना, निर्णय करना कहने का मतलब है, तो उस आदमी ने सोच समझ के कहा था, क्योंकि अगर तुम दुखी हो तो समझना तुम पहले से गलत रास्ते पे आ गए हो, तो उस गलत को पहले ठीक करो जब तक कि सुख उपलब्ध ना हो जाए, और जब सुख उपलब्ध हो जाए फिर निर्णय करना आगे का, समझे कि नहीं। तो आगे ना बढ़ते हुए इसे यहीं रोकेंगे, और हम बात कर रहे थे भ्रष्टाचार मुक्त किसी भी देश, दुनिया या हिस्से को कैसे बनाया जाए। तो हमने चर्चा करी कि किसी भी व्यक्ति को उसकी पर्सनालिटी के क्षेत्र में ही काम करना चाहिए, और उसी में वो आगे बढ़ेगा
तो इस दुनिया में कोई भी आदमी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, क्योंकि फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। और सोसाइटी जो है वो प्रत्येक कैटेगरी को समान सम्मान देगी, समान दृष्टि देगी, समान तरीके से मानेगी, समझेगी, जानेगी, तो फिर भ्रष्टाचार की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। जब ज़रूरत ही ख़त्म हो गई तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। हम जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लोगों को आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए तो भ्रष्टाचार का आविष्कार हुआ था। हमने आवश्यकता को ही ख़त्म कर दिया, अब भ्रष्टाचार की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो भ्रष्टाचार होगा भी नहीं। इस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त दुनिया बन सकती है। अभी अंतिम में कुछ वाक्य और हैं, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। कि आप देखते होंगे, आपके जीवन का अनुभव हुआ होगा कि चारों तरफ लोग दुखी हैं, 99% लोग दुखी हैं। क्यों? 99% लोगों के चेहरे लटके हुए हैं। क्यों? जीवन में संघर्ष कर करके थक गए हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत कैटेगरी में आ गए हैं। लोग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ उन्हें नहीं पहुँचना चाहिए था, और लोग वहाँ नहीं हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए था। बस इसके पीछे यही कारण है कि लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो रहे हैं। और जो 1% अपनी कैटेगरी से निकलकर किसी दूसरी कैटेगरी में पहुंचने में सफल हो जाते हैं, सोसाइटी की दृष्टि में सफल हो जाते हैं, असल में वो असफल हो गए हैं। उन्हें पता नहीं कि वो असफल हो गए हैं, क्योंकि जब तुम अपने को छोड़कर दूसरे जैसा बनना चाहोगे तो तुम दूसरे जैसा बनने की प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में, जो तुम्हारा अपना था वो खो जाएगा और तुम दूसरे भी नहीं बन पाओगे। तो जीवन असफल हुआ कि नहीं हुआ, यही असफलता है। सफलता क्या है? सफलता है कि जो मैं था, जो मैं अपना था ना, उसी को और विकसित करता, तो वही सफलता थी। हम इसके लिए एक उदाहरण दे सकते हैं गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध वैसे तो एक धनी व्यक्ति के घर में पैदा हुए थे, एक सम्राट, एक राजा के घर में पैदा हुए थे, एक राजकुमार थे, लेकिन कुछ घटनाओं को देखकर जीवन में उन्हें सन्यास की तरफ जाने की तरफ दिशा मिली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, और वो सन्यास की तरफ ही गए। अंततः गौतम बुद्ध को हम एक सन्यासी की तरह देखते हैं, एक संत की तरह देखते हैं, एक साधु की तरह, एक साधक की तरह देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी वैसी ही थी, है ना? अगर गौतम बुद्ध साधक बनने की बजाय, मतलब जो संत है वो संत बनने की बजाय, बुद्ध के मार्ग को छोड़कर किसी दूसरे मार्ग पर चलते, यानी किसी दूसरी कैटेगरी में जाने के लिए सोचते कि यार मैं राजकुमार पैदा हुआ और मैं कहाँ संत बन गया, और मुझे तो राष्ट्रपति होना चाहिए था, या पूरे अखंड भारत का राजा होना चाहिए था, तो जाहिर है गौतम बुद्ध दुखी होते, असफल हो जाते, क्योंकि वो बनने की प्रोसेस में अपने को खो देते। लेकिन गौतम बुद्ध बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे, उन्होंने अपने अंदर की आवाज़ को सुना, अपनी आत्मा के केंद्र को जाना, और उस दिशा में ही उन्होंने अपने पथ बढ़ाए, गति करी, विकास हुआ और सफल हुए। यही जीवन की सफलता है। अपने व्यक्तित्व को खोजो, अपनी पर्सनालिटी को खोजो, और उस क्षेत्र में गति करो, विकास करोगे तो सफल हो जाओगे, धन्य हो जाओगे, आनंद को उपलब्ध हो जाओगे, और यही परमात्मा का रूप है, यही परमात्मा है, और कुछ परमात्मा अलग से नहीं है। गौतम बुद्ध निर्वाण को उपलब्ध हो गए थे बहुत कम उम्र में ही, क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र से ही जिज्ञासा करनी शुरू कर दी थी अपनी पर्सनालिटी की, अपने व्यक्तित्व की, अपने बारे में खोज करने की उनकी जो जिज्ञासा थी वो बहुत कम उम्र में ही उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, उनकी शुरू हो गई थी, संदेह उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एक जिज्ञासा थी, जानना है कुछ, तो खुद को जानना उन्होंने शुरू करी, और उन्होंने अपने आप को जाना, और फिर वो सफल हो गए और निर्वाण को उपलब्ध हुए। निर्वाण माने क्या? निर्वाण का बेसिकली जो अर्थ है वो ये है कि जो मैं होने को हुआ था मैं आखिर में वही होकर मरा, यही निर्वाण है। इसी को भगवत्ता कहते, इसी को मोक्ष कहते, इसी को समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब ये नहीं है कि मैं आज सोच लूं कि मुझे समाधि लेना है और मैं किसी रास्ते पे गया, किसी शमशान घाट में गया या किसी जगह गया, किसी मंदिर में, कहीं भी गए, मैं गया किसी भी स्थान पे और मैंने वहाँ एक गड्ढा खुदवाया और मैं उस गड्ढे में कूद गया और मिट्टी ऊपर से डलवा दी और मैंने समाधि ले ली और लोगों से कहा कि हाँ मेरी समाधि बना देना, मेरी फ़ोटो टांग देना और कुछ चीज़ें रख देना, बन गई समाधि। ये समाधि नहीं है, गलती से भी इसको समाधि ना समझे। समाधि का अर्थ है कि जो मैं होने को हुआ था वही होकर मैं मरा, यही समाधि है, यही भगवत्ता है, यही शिव है, यही सुंदर है, यही परम ध्यान है। अगर मैं ऑक्सीजन से कहूं कि तू हाइड्रोजन बन जा तो कि गलत हो जाएगा ना, वैसे ही अगर मैं चित्रकार से कहूं तू धनी बन जा तो गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ रहे हैं मैं क्या क्या कहना चाहता हूं, किस मनोविज्ञान की मैं बात कर रहा हूं। और अपने व्यक्तित्व की दिशा में गति करना, विकास करना और चलना ही असल में मेरी दृष्टि में अध्यात्म है और आध्यात्मिकता है और असली विकास भी यही है। तो हम जो आप जानते होंगे कि 21 जून को हम योगा दिवस मनाते हैं, योगा डे मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग क्या है? बेसिकली योग यानी जोड़ने वाला, वो जो जोड़ है ना प्लस, वही योग है। हमें जुड़ना है, किससे जुड़ना है, हमें एक होना है, किससे? हमें इस अस्तित्व से एक होना है जिसने हमें बनाया, जिसने हमें निर्मित किया, जिसमें हम निर्मित हुए। हमें उस अस्तित्व से, उस प्रकृति से एक होना चाहिए। हम एक हो जाएंगे तो हम बाय डिफ़ॉल्ट सही चलेंगे, और जब हम बाय डिफ़ॉल्ट सही चलेंगे तो हम बाय डिफ़ॉल्ट सफल हो जाएंगे। इसलिए तो किसी आदमी ने कहा था इस दुनिया में कि तुम सफल होने के लिए पैदा हुए हो, कि तुम सफल होने के लिए पैदा हुए हो, तुम असफल हो ही नहीं सकते, इसलिए कभी हार मत मानना। लेकिन हमने इन वाक्यों को गलत जगहों पर इस्तेमाल किया है। प्रकृति ने तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट सफल होने की क्षमता दी है। अपनी क्षमताओं को पहचानो और तरक्की करो। मैं कह रहा था योग के विषय में। योग बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने आप को इस सृष्टि से जोड़ पाते हैं, आप एक हो पाते हैं। इस अस्तित्व से स्वयं को एक करने वाली प्रक्रिया का नाम योग है। यही योग का विज्ञान है पूरा। योग कुछ और नहीं है, वो आपको एक करता है, आप एक करता है ताकि आप बाय डिफ़ॉल्ट सफलता के रास्ते पे चल सके। जो आप अलग हो गए ना लाइफस्टाइल, जो आपके भिन्न हो गए हैं लाइफस्टाइल के कारण, आप अलग हो गए हैं, वो आपको योग एक करना चाहता है, आपको सफल करना चाहता है। भगवान यानी सृष्टि यानी प्रकृति आपको सफल करना चाहती, सफल बनाना चाहती है, एक एक आदमी को सफल बनाना चाहती है। वो किसी को लूज़र बनाती ही नहीं, सबको सफल बनाना चाहती है। लेकिन लोग अपने अहंकार के कारण, अपनी अज्ञानताओं के कारण प्रकृति से झगड़ा कर रहे हैं। प्रकृति से झगड़ा मतलब संघर्ष, वो संघर्ष कर रहे हैं। और आपको जीवन में ये सूत्र कुछ शैतान लोगों ने दे दिया है कि संघर्ष करो, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक युद्ध है। मेरे भाइयों और बहनों और मित्रों और सभी बड़े छोटे लोग, जीवन कोई युद्ध नहीं है, जीवन कोई संघर्ष नहीं है, जीवन एक धारा है जिसमें तुम्हें प्रकृति के साथ जुड़ना है और वो तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट सफल बना देगी। लेकिन तुम कुछ और होना चाहते हो, ये जो कुछ और होने की इच्छा है ना, ये जो कुछ और होना आप होना चाहते हैं, इसी का नाम अहंकार है। अहंकार कुछ और नहीं है, अहंकार माने नकली पहचाने जो आपने बना ली हैं अपने संबंध में। तो ये बहुत कुछ गहरी बातें हैं, मनोविज्ञान से संबंधित बातें हैं और हमारे जीवन को डायरेक्ट प्रभावित करती हैं। तो हमारा जो विषय हमने शुरू किया था भ्रष्टाचार से, कि उसकी कुल वजह भ्रष्टचर्या है, यानी आपकी भ्रष्ट लाइफस्टाइल ही उसकी कुल वजह है। इस दुनिया में जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है, समझ लीजिए कि लाइफस्टाइल भ्रष्ट होगा, इसलिए सब कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है। हमें नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, आंदोलन करने से भी कुछ नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। वर्षों से लोग आंदोलन कर रहे हैं, नारे लगाते हैं, गीत लिखते हैं, लेखन करते हैं, कानून की सलाखों में भ्रष्टाचारियों को बंद किया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है, ना जाने क्या क्या किया जाता है, लेकिन आज तक भ्रष्टाचार बंद नहीं हो सका। क्यों हो नहीं सकता? क्योंकि आप, क्योंकि इस दुनिया में उन 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 बीमारियों को ठीक किया जा रहा है जो बीमारी है ही नहीं। यानी आप बीमारी के उन कारणों को ठीक कर रहे हैं जो कारण है ही नहीं। आप नकली कारणों को ठीक कर रहे हैं बीमारी ठीक करने के लिए। तो भैया बीमारी ठीक कैसे हो जाएगी? बीमारी का जो कारण है, भ्रष्टाचार का जो कारण है, वो बेसिकली मैंने आपको बताया, भ्रष्टचर्या, जिसकी लाइफस्टाइल ही भ्रष्ट है। लाइफस्टाइल का भ्रष्ट होना ही भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है, इस बीमारी का मुख्य कारण है। हमें लाइफस्टाइल को ठीक करना होगा। और लाइफस्टाइल कैसे ठीक होगी? एक एक आदमी की, इस पृथ्वी पर रहने वाले एक एक आदमी की लाइफस्टाइल कैसे ठीक होगी? तो वो हो सकती योगा के माध्यम से, योग के माध्यम से। इसलिए भारतीय दर्शन में योग को बहुत महत्व दिया गया था। प्राचीन ग्रंथों में भी योग को बहुत महत्व दिया गया है। और जो जानकार हैं वो भी ये समझते हैं कि योग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है योग। योग लेकिन लोगों ने जो समझा योग का मतलब, कि योग करने से हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, हम और प्रोडक्टिव हो सकते हैं। नहीं नहीं, वो उसका इतना अकेला मकसद नहीं है। इससे आपका शरीर ठीक होता है, बात समझ में आती है, आप प्रोडक्टिव हो जाते हैं, वो भी सही है। लेकिन सिर्फ इसका इतना ही यूज़ नहीं है। योग एक बहुत बड़ा विज्ञान है, एक बहुत बड़ा गणित है। ये इतनी छोटी चीज़ के लिए नहीं है। योग आपके व्यक्तित्व के लिए है। जी हाँ, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही एक साइंस है योग, कि उसके कारण ही तुम अस्तित्व से, इस सृष्टि से तुम अपने आप को जोड़ पाते हो, सृष्टि की धारा में अपने आप को ले जा पाते हो, अपने आप को न्यूट्रल कर पाते हो। और जब तुम अपने आप को न्यूट्रल करोगे, नेचुरल करोगे, तो सृष्टि तुम्हें आदेश देगी, तुम्हें निर्देश देगी, और फिर तुम उन सृष्टि के निर्देशों का पालन करोगे तो अवश्य तुम सफल हो जाओगे। लेकिन तुम अभी ऐसे नहीं कर रहे हो। तो बेसिकली मैंने कुछ विचार आप सभी लोगों के समक्ष पेश किए भ्रष्टाचार के संबंध में। अगर विचार अच्छे लगे हों तो भी बताइए, अगर विचार में कुछ त्रुटि है तो भी बताइए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई त्रुटि है। हाँ, इसमें कुछ जोड़ा ज़रूर जा सकता है। तो क्या जोड़ना चाहिए जिससे हम इसको और बेहतर बना सकें, इस सीरीज को और बेहतर बना सकें? तो हम अवश्य मुझे साझा करें मेरे विचार। अंत में आपको कैसे लगे इसकी भी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और अंत में मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपके भीतर बैठे उस परमात्मा का धन्यवाद। आपके एक एक कण को, आपके एक 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 पदार्थ को, आपके व्यक्तित्व के एक एक पदार्थ, एक एक कण, एक एक अणु को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।